नमस्कार। एआई की दुनिया तेजी से बदल रही है और आज हम उस एक दस्तावेज, एक रिसर्च पेपर पर बात करेंगे जिसने इस बदलाव की रफ्तार को जैसे रॉकेट ही लगा दिया। इसका शीर्षक भी बड़ा दिलचस्प है, अटेंशन इज ऑल यू नीड। आज की बातचीत के लिए हमारे पास इस विषय पर जानकारी देने वाला विकिपीडिया का लेख है और साथ ही 2017 में छपा वो ओरिजिनल रिसर्च पेपर भी, जिसके कुछ खास हिस्से हमने देखे हैं। तो आज हम समझेंगे कि आखिर इस पेपर में ऐसा क्या था, ये इतना अहम क्यों बन गया कि आज के दौर के बड़े बड़े एआई मॉडल्स जैसे चैट जीपीटी वगैरह वो सब इसी की नींव पर खड़े हैं, और कैसे इसने एआई के विकास का मतलब पूरा नक्शा ही बदल दिया। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। मजे की बात तो यह है कि पेपर का नाम मशहूर बीटल्स गाने ऑल यू नीड इज लव से मिलता जुलता है, और जिस टेक्नोलॉजी की हम बात करेंगे उसका नाम ट्रांसफॉर्मर कैसे पड़ा। सुना है टीम के एक सदस्य जेकब उसघुरेट को बस ये शब्द सुनने में अच्छा लगा, कहते हैं उन्होंने अपनी टीम का नाम भी टीम ट्रांसफॉर्मर रख दिया था। खैर, नाम में क्या रखा है, काम देखते हैं। तो ये पेपर अटेंशन इज ऑल यू नीड आखिर है क्या बला? इसे 2017 में गूगल ब्रेन में काम कर रहे 8 रिसर्चर्स ने लिखा था। इसमें उन्होंने एक बिल्कुल नए तरह के डीप लर्निंग मॉडल का डिजाइन पेश किया जिसे नाम दिया गया ट्रांसफॉर्मर। आज की तारीख में यह पेपर मॉडर्न एआई की आप कह सकते हैं बाइबल जैसा माना जाता है। इसने एआई की दुनिया में जो धमाका हुआ, जिसे हम एआई बूम कहते हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल निभाया है।
बिल्कुल सही कहा आपने। और उस वक्त इन रिसर्चर्स का मुख्य लक्ष्य मशीन ट्रांसलेशन यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद को बेहतर बनाना था, लेकिन उन्हें अंदाजा था कि ये सिर्फ अनुवाद तक ही सीमित नहीं रहने वाला। पेपर में ही उन्होंने इशारा किया था कि ये तकनीक सवाल जवाब करने वाले सिस्टम, मतलब क्वेश्चन आंसरिंग, और यहाँ तक कि आजकल जिसे हम मल्टी मॉडल एआई कहते हैं,
हाँ, जो टेक्स्ट, इमेज, आवाज सब समझ सके,
एग्जैक्टली, उसमें भी काम आ सकती है। उन्होंने शुरुआती प्रयोगों में ही अंग्रेजी से जर्मन अनुवाद के अलावा विकिपीडिया लेख लिखने और वाक्यों के व्याकरण को समझने, मतलब पार्सिंग जैसे काम करके देख लिए थे। इससे उनका यकीन पक्का हो गया कि ये सिर्फ ट्रांसलेशन टूल नहीं बल्कि एक ज्यादा ताकतवर जनरल पर्पज लैंग्वेज मॉडल बन सकता है।
और इसकी अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगता है कि 2025 तक इस पेपर को 1,73,000 से भी ज्यादा बार दूसरे रिसर्च पेपर्स में कोट किया जा चुका है।
बापरे,
हाँ, ये इसे 21वीं सदी के सबसे ज्यादा प्रभावशाली रिसर्च पेपर्स में से एक बनाता है।
स्वीकार्यता और प्रभाव को दिखाता है, वाकई कमाल है।
तो सवाल उठता है कि इस ट्रांसफॉर्मर से पहले क्या दिक्कतें थी, एआई भाषा को कैसे समझता था, मतलब उस समय
ट्रांसफॉर्मर से पहले जब एआई को किसी क्रम वाली जानकारी जैसे कि एक वाक्य को समझना होता था तो वो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स या शॉर्ट में कहें तो आरएनएस,
हाँ सुना है,
और खासकर उनके एक बेहतर वर्जन LSTM यानी लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी का इस्तेमाल करता था। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये मॉडल वाक्य को एक शब्द के बाद दूसरा शब्द फिर तीसरा ऐसे क्रम में पढ़ते थे जैसे हम इंसान पढ़ते हैं।
सुनने में तो ये तरीका ठीक लगता है, फिर इसमें परेशानी क्या थी?
परेशानी ये थी कि ये मॉडल स्वभाव से ही सीक्वेंशियल थे यानी क्रमानुसार चलने वाले, उन्हें एक शब्द पूरा प्रोसेस करने के बाद ही अगले पर जाने की इजाजत थी। इसकी वजह से आप ट्रेनिंग के दौरान पूरे वाक्य को एक साथ प्रोसेस नहीं कर सकते थे।
अच्छा,
मतलब समानांतर कंप्यूटिंग जिसे पैरालाइजेशन कहते हैं वो मुश्किल थी। आप इसे ऐसे समझे कि एक पाइपलाइन है जिसमें एक बार में एक ही चीज जा सकती है।
समझ गया, तो इससे ट्रेनिंग बहुत धीमी हो जाती होगी।
हाँ, बहुत धीमी, और अगर वाक्य बहुत लंबा हो तो दिक्कत और बढ़ जाती थी।
अच्छा, कैसे?
लंबी सीक्वेंस में ये मॉडल अक्सर शुरुआत की जानकारी भूल जाते थे। इसे वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम कहते हैं।
वैनिशिंग ग्रेडियंट,
हाँ। सोचिए आप एक लंबी कहानी पढ़ रहे हैं और अंत तक पहुंचते पहुंचते शुरुआत में क्या हुआ था ये भूल जाएं। कुछ वैसा ही।
ओके।
साथ ही मेमोरी की भी अपनी सीमाएं थी। फिर 2014 में सीक टू सीक मॉडल आए जिनमें दो RNA होते थे, एक एनकोडर और एक डिकोडर।
एनकोडर डिकोडर, हाँ।
एनकोडर इनपुट वाक्य को समझता था, डिकोडर आउटपुट वाक्य बनाता था। फिर उसी साल RNS सर्च मॉडल में अटेंशन मैकेनिज्म लाया गया।
सही।
ये डिकोडर को बताता था कि इनपुट वाक्य के किन शब्दों पर ज्यादा ध्यान देना है।
अच्छा, तो अटेंशन का आइडिया पहले से था थोड़ा।
हाँ, लेकिन वो अटेंशन RNN के ऊपर एक तरह की परत थी, उससे अनुवाद थोड़ा सुधरा लेकिन वो अब भी RNN के क्रम वाले तरीके पर ही निर्भर थे। वो पाइपलाइन वाली दिक्कत, मतलब सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग, वो अभी भी थी।
और यहीं पे कहानी में असली मोड़ आता है। पेपर का नाम ही कहता है अटेंशन इज ऑल यू नीड, यानी बस ध्यान ही काफी है। ये सिर्फ कैची टाइटल नहीं था, बल्कि यही उनका सबसे बड़ा आइडिया था। उन्होंने कहा, हमें ये एक एक करके शब्द पढ़ने की जरूरत ही क्यों है।
एकदम सही, उन्होंने आरएनएन की इस क्रमबद्धता, मतलब सिक्वेंशियलिटी को पूरी तरह से हटा दिया। इसकी जगह उन्होंने पेश किया सेल्फ अटेंशन, जिसे इंट्रा अटेंशन भी कहते हैं।
सेल्फ अटेंशन,
हाँ, ये एक ऐसा तरीका है जो एक ही वाक्य के अंदर मौजूद अलग अलग शब्दों के बीच सीधा रिश्ता बनाता है। ये मॉडल को ये समझने की ताकत देता है कि वाक्य के कौन से हिस्से एक दूसरे के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, भले ही वो वाक्य में कितनी भी दूर क्यों ना हो।
अरे वाह,
आरएनएन की तरह जानकारी को एक शब्द से दूसरे शब्द तक सफर करने की जरूरत ही नहीं रही।
वाह, तो ये कुछ ऐसा है जैसे हम कोई वाक्य पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग खुद ही समझ जाता है कि कौन से शब्द सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, चाहे वो शुरू में हो, बीच में या आखिर में।
हाँ, कुछ हद तक आप ऐसा कह सकते हैं। सेल्फ अटेंशन मॉडल को पूरे इनपुट को एक साथ देखने और उसके हिस्सों के बीच सीधे संबंध बनाने की क्षमता देता है।
इसका एक मुख्य तकनीकी हिस्सा है स्केल्ड डॉट प्रोडक्ट अटेंशन।
स्केल्ड डॉट प्रोडक्ट अटेंशन,
हाँ, इसे आसान भाषा में समझें तो हर शब्द, जिसे हम क्वेरी कह सकते हैं, मानो पूछता है कि वाक्य में मौजूद दूसरे कौन कौन से शब्द, जिन्हें कीज कह सकते हैं, उसके मतलब को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है।
क्वेरी, कीज, ओके।
फिर उन जरूरी शब्दों के अर्थ या प्रतिनिधित्व, जिन्हें वैल्यूज कहते हैं, उनको ज्यादा वजन या अटेंशन दिया जाता है।
अच्छा, और ये सब होता कैसे है? क्या ये बहुत धीमा नहीं है? आरएनएन से भी धीमा नहीं, यही तो कमाल है। ये सारी प्रक्रिया गणितीय ऑपरेशंस, खासकर मैट्रिक्स गुणा, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के जरिए होती है। और हमारे आजकल के कंप्यूटर्स, खासकर जीपीयूज, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स, वो इस काम के लिए बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड होते हैं।
अच्छा, जीपीयूज, हाँ, वो तो पैरेलल प्रोसेसिंग में माहिर होते हैं।
बिल्कुल, तो ये काम असल में बहुत तेजी से हो जाता है। और सबसे बड़ा फायदा, इसने आरएनएन वाले क्रम से चलने की मजबूरी को खत्म कर दिया।
अच्छा,
अब आप पूरे वाक्य के सारे शब्दों पर एक साथ काम कर सकते हैं। इसी ने बड़े पैमाने पर पैरेलल प्रोसेसिंग का दरवाजा खोला।
अच्छा, तो ये पैरेलाइजेशन यानी समानांतर प्रोसेसिंग ही वो चाबी थी जिसने सब कुछ बदल दिया।
हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था, बहुत ही बड़ा। आरएनएन के साथ आप कितना भी शक्तिशाली कंप्यूटर लगा लें, उसे काम तो एक एक करके ही करना था। लेकिन ट्रांसफॉर्मर के साथ आप एक ही वाक्य को कई सारे प्रोसेसर्स पर एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं। इससे ट्रेनिंग का समय कई गुना कम हो गया और बहुत बड़े बड़े मॉडल बनाना संभव हो पाया। ये पहला बड़ा फायदा था, स्पीड और स्केल।
समझ गया, तो ये तो हुई सेल्फ अटेंशन की बात, लेकिन पेपर में और भी नई चीजें थी, जैसे ये मल्टी हेड अटेंशन, ये क्या है?
हाँ, उन्होंने सिर्फ सेल्फ अटेंशन का आइडिया नहीं दिया, बल्कि उसे और असरदार बनाने के तरीके भी बताए। मल्टी हेड अटेंशन उनमें से एक है। इसे ऐसे समझें कि एक ही वाक्य को सिर्फ एक नजरिए से देखने की बजाय मॉडलों से कई अलग अलग नजरियों से, मतलब हेड से, एक साथ देखता है।
जैसे किसी मुश्किल प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए हम कई एक्सपर्ट्स की टीम बनाते हैं और हर एक्सपर्ट अपने खास एंगल से प्रॉब्लम को देखता है।
बिल्कुल सही उपमा है, एकदम परफेक्ट। हर हेड मानो एक एक्सपर्ट है जो वाक्य के अलग अलग पहलुओं पर ध्यान देता है। कोई शायद व्याकरण देख रहा हो, कोई शब्दों के आपसी अर्थों के संबंध, कोई लंबी दूरी के कनेक्शन, इस तरह से।
अच्छा,
पेपर में उन्होंने एक ऐसे पैरेलल अटेंशन हेड्स का इस्तेमाल किया था। हर हेड क्वेरी, की और वैल्यू के अपने सेट पे काम करता है, फिर इन सभी हेड से मिली जानकारी को मिलाकर एक ज्यादा समृद्ध, मतलब रिचर और गहरी समझ तैयार की जाती है।
और खर्चा, मतलब कंप्यूटेशनल कॉस्ट,
वो ज्यादा नहीं बढ़ती क्योंकि हर हेड थोड़े कम डायमेंशन पर काम करता है, इसलिए कुल मिलाकर कंप्यूटेशनल लागत लगभग सिंगल हेड जितनी ही रहती है, लेकिन मॉडल की समझने की क्षमता काफी बेहतर हो जाती है।
ये तो कमाल का तरीका है, लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। अगर मॉडल शब्दों को एक एक करके नहीं पढ़ रहा, तो उसे ये कैसे पता चलता है कि कौन सा शब्द पहले आया और कौन सा बाद में? जैसे बिल्ली चटाई पर बैठी और चटाई बिल्ली पर बैठी, इन दोनों वाक्यों का मतलब तो बिल्कुल अलग है।
हाँ, बिल्कुल सही सवाल। ये वाकई एक चुनौती थी, क्योंकि आरएनएन और कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स, जो एक और तरह की तकनीक है, उनमें क्रम की जानकारी अपने आप बनी रहती थी, लेकिन ट्रांसफॉर्मर ने उसे हटा दिया था। इस समस्या को सुलझाने के लिए उन्होंने पोजिशनल एनकोडिंग नाम की तकनीक इजाद की।
पोजिशनल एनकोडिंग, पोजिशन की एनकोडिंग, ये कैसे काम करती है?
इसका मूल आइडिया ये है कि हर शब्द को उसकी पोजिशन या क्रम के हिसाब से एक खास कोड या सिग्नल दिया जाए।
कोड?
हाँ, एक तरह का गणितीय सिग्नल। ये कोड शब्द के अपने अर्थ वाले वेक्टर, जिसे एम्बेडिंग कहते हैं, उसमें जोड़ दिया जाता है।
अच्छा।
इस तरह मॉडल को पता चल जाता है कि कौन सा शब्द वाक्य में कहाँ पर है, पहला, दूसरा, पांचवा वगैरह।
अच्छा।
पेपर में इसके लिए उन्होंने गणित के साइन और कोसाइन फंक्शंस का इस्तेमाल किया, जिनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। हर डायमेंशन एक अलग वेव की तरह होता है।
ओ, तो ये गणितीय तरंगे शब्दों को उनका पता बताती हैं, एक तरह से एड्रेस दे देती हैं।
हाँ, आप ऐसा सोच सकते हैं। बिल्कुल। लेखकों ने ये तरीका इसलिए चुना क्योंकि उन्हें लगा कि इससे मॉडल न सिर्फ शब्दों की एब्सोल्यूट पोजीशन, मतलब ये 25वां शब्द है, ये सीखेगा, बल्कि उनकी रिलेटिव पोजीशन, जैसे ये शब्द पिछले शब्द से 3 स्थान आगे है, इसको भी आसानी से समझ पाएगा। और उन्हें उम्मीद थी कि शायद इससे मॉडल ऐसी लंबी सीक्वेंस को भी समझ सकेगा जो उसने ट्रेनिंग के दौरान देखी ही न हो। उन्होंने शब्दों की पोजीशन को सीखने, मतलब लर्न्ड एम्बेडिंग्स का भी प्रयोग किया, लेकिन पाया कि साइन कोसाइन वाले तरीके से भी लगभग उतने ही अच्छे नतीजे मिल रहे थे, और शायद ये लंबी सीक्वेंस के लिए बेहतर काम करे, इसलिए इसे चुना गया।
तो ये सब मिलाकर सेल्फ अटेंशन, मल्टी हेड अटेंशन, पोजिशनल एनकोडिंग, ये बना ट्रांसफॉर्मर मॉडल। अब बात करते हैं इसके नतीजों की। क्या ये वाकई उतना असरदार साबित हुआ जितना सुनने में लग रहा है?
बिल्कुल। ये सिर्फ थ्योरी नहीं थी, इसने असल दुनिया में कमाल के नतीजे दिखाए। मशीन ट्रांसलेशन में, जो उस समय का मुख्य बेंचमार्क था, ट्रांसफॉर्मर ने उस वक्त के सबसे बेहतरीन मॉडल्स को पीछे छोड़ दिया।
सच में?
हाँ। उदाहरण के लिए WMT 2014 के इंग्लिश से जर्मन ट्रांसलेशन वाले काम पर इसने ब्लू स्कोर में 2 अंकों से ज्यादा का सुधार किया और 28.4 का नया रिकॉर्ड बनाया।
ब्लू स्कोर?
यस।
ये क्या होता है, एक बार फिर से बताएंगे?
ब्लू स्कोर?
यस।
हाँ, वो मोटे तौर पे ये मापता है कि मशीन द्वारा किया गया अनुवाद इंसान के किए गए अच्छे अनुवादों के कितना करीब है। जितना ज्यादा स्कोर, उतना बेहतर अनुवाद।
अच्छा, तो 2 अंकों का सुधार मतलब बहुत बड़ी बात थी उस समय।
हाँ, उस फील्ड में 2 ब्लू पॉइंट्स का इम्प्रूवमेंट बहुत बड़ा माना जाता था। स्टेट ऑफ द आर्ट को काफी पीछे छोड़ दिया था इसने।
और सबसे हैरान करने वाली बात शायद ये थी कि ये नतीजे बहुत कम ट्रेनिंग टाइम में मिले।
हाँ, ये स्पीड वाला फैक्टर बहुत बहुत जरूरी था। उनका जो बेस मॉडल था वो 8 NVIDIA P100 GPUs पर सिर्फ 12 घंटे में ट्रेन हो गया।
सिर्फ 12 घंटे में?
हाँ, और जो बड़ा वाला मॉडल था वो भी सिर्फ 3.5 दिन में। ये उस समय के दूसरे टॉप मॉडल्स की ट्रेनिंग कॉस्ट का, मतलब आप सोचिए, बहुत छोटा हिस्सा था। तुलना के लिए गूगल का ही पिछला सबसे अच्छा ट्रांसलेशन मॉडल था GNMT+RL, उसको ट्रेन करने में इससे लगभग 10 गुना ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर लगी थी।
बाप रे।
तो कम समय, कम लागत और बेहतर नतीजे, यही वजह है कि ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर AI बूम का इंजन बन गया।
निश्चित रूप से, बिल्कुल। इसकी पैरेलल चलने की क्षमता ने ग्राफिक्स कार्ड्स, GPUs पर बहुत बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग को मुमकिन बनाया।
हाँ।
इसी वजह से हम आज इतने बड़े बड़े भाषा मॉडल, मतलब LLMs देख पा रहे हैं।
सही।
ट्रांसफॉर्मर के आधार पर ही बाद में BERT 2018 बना, जिसने भाषा समझने के कई कामों में क्रांति ला दी। फिर OpenAI की GPT सीरीज आई।
GPT? हाँ, ChatGPT तो आजकल हर कोई जानता है। बिल्कुल। GPT सीरीज ने भाषा रचने, मतलब जेनरेट करने में कमाल दिखाया, और आज हम ChatGPT जैसे मॉडल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब ट्रांसफॉर्मर की ही देन है।
ये तो सिर्फ भाषा की बात हुई, क्या इसका असर दूसरी जगहों पर भी पड़ा, मतलब AI के दूसरे फील्ड्स में?
हाँ, बिल्कुल। ट्रांसफॉर्मर सिर्फ टेक्स्ट तक ही सीमित नहीं रहा। 2020 में विजन ट्रांसफॉर्मर यानी VIT आया।
VIT, विजन के लिए?
हाँ, उसने दिखाया कि यही आर्किटेक्चर तस्वीरों को समझने, मतलब कंप्यूटर विजन में भी बहुत कारगर हो सकता है। इसने कॉन्वोल्यूशन वाले पुराने तरीकों को चैलेंज किया। फिर आवाज पहचान ने स्पीच रिकग्निशन के लिए कॉन्फॉर्मर जैसे मॉडल बने। यहां तक कि रोबोटिक्स में फैसले लेने के लिए डिसीजन ट्रांसफॉर्मर जैसे मॉडल भी इसी से प्रेरित है।
अच्छा।
और जैसा मैंने पहले कहा, गूगल ट्रांसलेट ने भी अपने पुराने RNN वाले सिस्टम को हटाकर ट्रांसफॉर्मर को अपना लिया। ये दिखाता है कि ये कितना फ्लेक्सिबल और पावरफुल आर्किटेक्चर साबित हुआ है।
और वो आठ लेखक जिन्होंने ये पेपर लिखा था, आशीष वसवानी, नोआम शजेर, निकी परमार, याकूब उस्कुरेट, लियोन जोन्स, एडन गोमेज, लूकस काइजर और इलिया पोलोसुखिन, उनका क्या हुआ?
सभी गूगल में ही है।
ये भी एक दिलचस्प कहानी है। इस पेपर के छपने के कुछ सालों के अंदर ही ये आठों लेखक गूगल छोड़कर चले गए।
आठों के आठों?
क्यों?
हाँ, कुछ ने अपनी एआई कंपनियां शुरू की, जैसे कोहेयर, character.ai, adept.ai, नियर प्रोटोकॉल। कुछ दूसरी बड़ी कंपनियों में चले गए। कहा जाता है कि शायद उन्हें लगा कि वो ट्रांसफॉर्मर की क्षमताओं को उस तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे थे जैसा वो गूगल के अंदर रहते हुए करना चाहते थे।
अच्छा,
ये सोचने वाली बात है कि एक ही पेपर के सारे लेखक इतनी जल्दी उस कंपनी को छोड़ दें जहां उन्होंने ये क्रांतिकारी काम किया था।
वाकई। तो अगर हम संक्षेप में देखें, वो क्या मुख्य कारण थे जिनकी वजह से सेल्फ अटेंशन पारंपरिक आरएनएन या कॉन्वोल्यूशनल लेयर से बेहतर साबित हुआ, जैसा कि पेपर में बताया गया?
हाँ, पेपर ने तीन मुख्य फायदे गिनाए थे जिन्हें हमने बातचीत में छुआ भी है, पर एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला, कंप्यूटेशनल जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी पर लेयर। हर लेयर को प्रोसेस करने में कितना कंप्यूटेशनल काम लगता है। जब वाक्य की लंबाई, जिसे n कहते हैं, उसके रिप्रेजेंटेशन की डायमेंशन, जिसे d कहते हैं, से कम होती है, जो अक्सर होता है वाक्यों के साथ, तो सेल्फ अटेंशन, जिसकी जटिलता लगभग n स्क्वायर d होती है, RNN, जिसकी n d स्क्वायर होती है, से तेज होती है।
अच्छा, मतलब n छोटा हो तो n स्क्वायर वाला फैक्टर उतना भारी नहीं पड़ता।
हाँ। दूसरा, समानांतरण, अमाउंट पैरेललाइजेबल। जैसा हमने बात की, सेल्फ अटेंशन में लगभग सारा काम एक साथ पैरेलल में हो सकता है। इसे तकनीकी भाषा में ओ ऑफ वन सीक्वेंशियल ऑपरेशंस कहते हैं।
ओ ऑफ वन मतलब कांस्टेंट टाइम।
हाँ, जबकि आरएनएन को क्रम से चलना पड़ता है, एक स्टेप के बाद दूसरा, यानी ओ ऑफ एन सीक्वेंशियल ऑपरेशंस। और जीपीयू जैसी हार्डवेयर पर पैरेलल काम करना बहुत फायदेमंद होता है।
सही।
एआई के लिए मुश्किल होता है। सेल्फ अटेंशन में कोई भी दो शब्द सीधे एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, उनके बीच का रास्ता बहुत छोटा, मतलब कांस्टेंट ओ ऑफ वन होता है,
सीधा कनेक्शन।
हाँ, लेकिन आरएनएन में जानकारी को एक शब्द से दूसरे शब्द तक चलकर जाना पड़ता है, तो रास्ता लंबा ओ ऑफ एन हो जाता है, और छोटा रास्ता लंबी दूरी की निर्भरता यानी लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसी सीखना आसान बनाता है।
तो छोटा रास्ता, तेज रफ्तार और एक साथ काम करने की क्षमता, इन चीजों ने मिलकर ट्रांसफॉर्मर को इतना सफल बनाया।
बिल्कुल। इसने दिखाया कि भाषा या किसी भी क्रम वाली जानकारी को समझने के लिए जरूरी नहीं कि आप उसे क्रम से ही प्रोसेस करें। अटेंशन मैकेनिज्म, खासकर सेल्फ अटेंशन, आपको पूरी जानकारी को एक साथ देखने और उसके हिस्सों के बीच के जटिल संबंधों को पकड़ने की ताकत देता है।
तो संक्षेप में कहें तो अटेंशन इज ऑल यू नीड पेपर ने एआई की दुनिया को ट्रांसफॉर्मर नाम का एक शक्तिशाली औजार दिया। इसने पुराने धीमे क्रमबद्ध तरीकों को हटाकर एक ज्यादा तेज, ज्यादा समानांतर और ज्यादा असरदार तरीका पेश किया, सेल्फ अटेंशन का। इसी की वजह से आज हम इतने बड़े और काबिल एआई मॉडल देख पा रहे हैं, और वो भी इतनी जल्दी विकसित होते हुए।
हाँ, और इसका असर सिर्फ मशीन ट्रांसलेशन पर नहीं, बल्कि भाषा समझने, रचने, तस्वीरें देखने, आवाज पहचानने, यहाँ तक के रोबोटिक्स तक फैला हुआ है। ये एक तरह का जनरल पर्पस आर्किटेक्चर बन गया है जिसने एआई के कई अलग अलग फील्ड्स को आगे बढ़ाया है। इसने साबित किया कि जटिल पैटर्न और निर्भरता सीखने के लिए रिकरेंस ही एकमात्र रास्ता नहीं है।
इस पेपर ने लंबी दूरी की निर्भरता सीखने के लिए रास्ते की लंबाई को ओ ऑफ एन से घटाकर ओ ऑफ वन कर दिया, यानी जानकारी के दो बिंदुओं के बीच की दूरी को नाटकीय रूप से कम कर दिया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है।
एआई जानकारी को कैसे प्रोसेस करता है, इसमें अगला बड़ा मौलिक बदलाव क्या हो सकता है? ट्रांसफॉर्मर ने लंबी दूरी की निर्भरता को तो संभाल लिया, लेकिन इसकी एक सीमा है।
क्या सीमा?
क्योंकि हर शब्द हर दूसरे शब्द पर ध्यान देता है, इसकी कॉम्प्यूटेशनल लागत यानी ओ ऑफ एन स्क्वायर यानी एन स्क्वायर बहुत लंबे वाक्यों या दस्तावेजों के लिए, मतलब वेरी लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट के लिए, बहुत ज्यादा हो जाती है।
हाँ, एन स्क्वायर तो बहुत तेजी से बढ़ेगा।
बिल्कुल। तो शायद अगला कदम एक ऐसा आर्किटेक्चर हो जो लंबी दूरी की निर्भरता को कुशलता से संभाले, लेकिन जिसकी लागत लंबाई के साथ इतनी तेजी से न बढ़े, मतलब शायद लीनिया या मियर लीनिया कॉम्प्लेक्सिटी वाला कुछ।
ये हो सकता है।
या फिर क्या हमें तर्क करने मतलब रीजनिंग या दुनिया की गहरी समझ वर्ल्ड नॉलेज को एआई में बेहतर तरीके से डालने के लिए बिल्कुल अलग तरह के आर्किटेक्चर की जरूरत होगी?
ये वाकई बड़े सवाल है।
हाँ, ये वो बड़े सवाल हैं जिन पर आज दुनिया भर के रिसर्चर्स काम कर रहे हैं। हाँ। और जिन पर हमें आगे भी नजर रखनी होगी। एआई का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, शायद ये तो बस शुरुआत है।